हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आर्ना की बात सुनकर रिदांश कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही आर्ना और उसे कमरे के दरवाजे पर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। दोनों दरवाजे की ओर देखते हैं तो सामने नम्या खड़ी है। आर्ना की बात सुनकर नम्या के हाथ से अभी अभी कॉफी के मग की ट्रे नीचे गिर गई थी और वो गुस्से से भरी नजरों से आर्ना को घूर रही थी। नम्या अंदर आते हुए तीखी नजरों से आर्ना की ओर देखते हुए, डोंट टेल मी कि तुम मेरे करण की बात कर रही हो। आर्ना अपनी नजरें नम्या से फेरते हुए, मैं उसी की बात कर रही हूँ। नम्या गुस्से से, जस्ट शट अप, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बकवास करोगी और हम यकीन कर लेंगे? मैं अपने करण को अच्छे से जानती हूँ। उसने आज तक किसी दूसरी लड़की को छूना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। आर्ना नम्या की तरफ देखकर, मैं जानती हूँ तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो और शायद तुम्हें मेरी बातों पर कभी यकीन भी नहीं होगा, लेकिन एक औरत होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारी हकीकत जानते बूझते एक दूसरी औरत की जिंदगी तबाह होने से बचाऊं। इसीलिए मैं बस तुम्हें इतना ही कहूंगी कि वो घटिया इंसान तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ बंद कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। नम्या तिल मिलाकर, बकवास बंद करो अपनी, मुझे तुम्हारी किसी भी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है और मैं अपने करण को खुद बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे उसके बारे में तुम जैसी घटिया लड़की से कुछ भी जानने की ना तो जरूरत है और ना ही शौक। और तुम क्या मेरे करण को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोगी जिसका खुद का कैरेक्टर ही गिरा हुआ है? रिदांश नम्या को टोकते हुए, नम्या जस्ट स्टॉप इट। नम्या, नहीं भाई, आज मैं इसे इसकी औकात दिखा के रहूंगी। आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करण पर इल्जाम लगाने की? आर्ना, मैंने किसी पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया है। मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। ओ जस्ट शट अप, रिदांश की तरफ देखकर, भाई आप भी तो करण को अच्छे से जानते हैं ना, वो कभी भी ऐसी गिरी हुई और घटिया हरकत नहीं कर सकता। यू नो हिम ना भाई? हाँ। आर्ना रिदांश की तरफ देखकर, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की है और आपको याद है उस दिन भी जब आपने मुझसे करण से बदतमीजी को लेकर नम्या से माफी मांगने के लिए कहा था, और उस दिन भी जब आप किचन में आए थे और मैं रो रही थी तो उसने कितनी सफाई से छिपकली का बहाना बनाकर आपको झूठ कहा था। मेरे रोने की या डरने की वजह कुछ और नहीं बल्कि वही इंसान था। आर्ना की बात सुनकर रिदांश बीती बातों को याद करने लगता है। मेरे माफी मांगने का मतलब है कि मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत होती तो जरूर माफी मांग लेती, लेकिन मैं जब गलत हूँ ही नहीं तो मैं माफी भी नहीं मांगूंगी। रिदांश करण से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दरअसल मुझे प्यास लगी थी तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ आकर मैंने भाभी जी को छिपकली से डरते हुए देखा तो बस उसी को भगाने में मैं उनकी मदद करने लगा। लेकिन देखिए ना भाभी जी तो बच्चों की तरह किस कदर डर गई उस छिपकली से। ये सब तुम सिर्फ इसीलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम बदला ले रही हो मुझसे। जलती हो तुम मुझसे और मेरी खुशियों से। सुना, तुम जलती हो तुम। ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारी अंधी मोहब्बत बोल रही है। लेकिन जिस दिन भी तुम्हारी आंखों से उस घटिया इंसान की झूठी मोहब्बत की पट्टी उतरेगी उस दिन सारा सच आईने की तरह खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। तिल मिलाकर, बकवास बंद करो अपनी। एक लफ्ज और मेरे करण के बारे में कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्ना, मेरे कुछ ना बोलने से सच नहीं बदलेगा। नम्या गुस्से से आर्ना की तरफ बढ़ते हुए, तुम्हें तो मैं। रिदांश बीच में ही नम्या का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए, क्या कर रही हो नम्या, बिहेव योरसेल्फ। नम्या, छोड़ दीजिए भाई मुझे, आज मैं इसे इसकी औकात दिखा के रहूंगी। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़ दीजिए भाई मुझे। रिदांश सख्त भाव से, जस्ट स्टॉप इट नम्या, जस्ट स्टॉप इट। नम्या नम आंखों से रिदांश की तरफ देखते हुए, भाई आपको भी लगता है कि करण ऐसी कुछ हरकत कर सकता है? रिदांश, मैंने इसे लेकर हाँ नहीं बोला है नम्या। नम्या, लेकिन आपने ना भी तो नहीं कहा ना भाई। आर्ना की तरफ देखकर, ये सब इसने ही किया है। पता नहीं कौन सा काला जादू किया है जो एक एक करके सब इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। पहले आयुष और प्रिशा, फिर माँ और अब आप भी अपने दांत पीसते हुए, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही नम्या दोबारा से आर्ना की तरफ बढ़ने को होती है, रिदांश उसकी बाजू पकड़कर उसे वापस पीछे की तरफ खींच लेता है। रिदांश नाराजगी से, इनफ इज इनफ नम्या, जाओ यहाँ से अपने कमरे में अभी के अभी। नम्या, लेकिन भाई। रिदांश सख्त भाव से, आई सेड गो नाउ। रिदांश की बात सुनकर नम्या आंसुओं भरी गुस्से की आंखों से आर्ना को एक नजर देखते हुए वहाँ से चली जाती है। आर्ना, आपको अपनी बहन से इस तरीके से इतना रूड होकर बात नहीं करनी चाहिए थी। रिदांश गुस्से से, जस्ट शट अप, मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी सीखने की जरूरत नहीं है कि मुझे किस तरीके से अपनी बहन से बात करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं। ये हमारा पर्सनल मैटर है, सो स्टे अवे फ्रॉम दिस डेंजरस एक्सप्रेशन से। और एक बात मेरी अच्छे से याद रखना, अगर ये बात झूठ निकली या फिर ये तुम्हारी कोई साजिश या खेल निकला, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जिसका तुम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती। आर्ना, रिदांश की आंखों में देखकर, और अगर ये बात सच निकली तो रिदांश अग्निहोत्री का इंसाफ रिश्तों को बैसाखी बनाकर ना तो कभी मोहताज हुआ है और ना ही कभी होगा। इतना कहकर रिदांश भी कमरे से बाहर चला जाता है और आर्ना असमंजस से उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। वह रिदांश के बर्ताव को देखकर समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इन सब बातों को लेकर रिदांश के मन में चल क्या रहा है। अगली सुबह भी रिदांश जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया था और आर्ना से ना तो उसने कोई बात की थी और ना ही कुछ भी इस सिलसिले में कहा ही था। आर्ना इसी उलझन में थी कि आखिर रिदांश का क्या फैसला होगा। जहां उसके दिमाग को यकीन था कि रिदांश अपनी बहन और करण की ही बात मानेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद रिदांश उस पर यकीन कर ले। दोपहर के वक्त नम्या भी किसी काम से बाहर चली जाती है। आर्ना से मिलने कल्पना जी प्रिशा के साथ उसके पास आती हैं और उससे बहुत सारी बातें करती हैं। हालांकि आर्ना का जहन अभी भी कल रात वाले इंसिडेंट पर अटका था, लेकिन फिर भी वह बड़े ही प्यार दुलार से कल्पना जी को ट्रीट कर रही थी। कुछ देर बाद प्रिशा कल्पना जी को वहां से लेकर चली जाती है। कल्पना जी को देखकर आज आर्ना को अपने पापा की याद आ गई थी, इसीलिए वह उन्हें कॉल करने के लिए अपना फोन उठाती है। लेकिन इससे पहले कि वह मिस्टर कपूर को फोन कर पाती, रिदांश कमरे में आता है और आर्ना को अपने साथ चलने के लिए कहता है।
इससे पहले कि आर्ना उसे कुछ कहती या पूछती, रिदांश उसका जवाब सुने बिना ही उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे लाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है और खुद ही गाड़ी ड्राइव करके वहां से आर्ना को लेकर निकल पड़ता है। आर्ना असमंजस में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिदांश उसे कहां लेकर जा रहा है और रिदांश के ब्लैंक एक्सप्रेशन उसकी उलझन और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। वो जानती थी कि रिदांश से कुछ भी पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बताने तो वैसे भी नहीं वाला। इसीलिए आर्ना बस खामोशी से इंतजार करते हुए गाड़ी में बैठी थी। कुछ देर बाद रिदांश एक बंगले के सामने अपनी गाड़ी रोकता है और आर्ना को उसके अंदर लेकर जाता है। आर्ना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिदांश उसे कहां लेकर जा रहा है। कुछ पल बाद रिदांश आर्ना को उसी बंगले में नीचे बेसमेंट में लेकर जाता है और वहां का नज़ारा देखकर एक पल आर्ना घबरा जाती है। टॉम और रिदांश के कुछ और लोगों ने किसी को कुर्सी से बांध कर रखा हुआ था और जिसके चेहरे पर इस वक्त अंधेरा होने की वजह से आर्ना उसके चेहरे को ठीक से नहीं देख पा रही थी। लेकिन रिदांश के इशारा करने पर जब उस शख्स के सर के ऊपर छत पर लगी लाइट ऑन होती है और आर्ना उस शख्स का चेहरा देखती है, तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि करण था और जिसके चेहरे पर गंभीर चोट और खून के निशान थे। करण को देखकर आर्ना शॉक्ड और सवालिया नजरों से रिदांश को देखती है। रिदांश आर्ना को अपनी गोद से उतारते हुए उसकी तरफ देखते हुए, कहा था ना कि रिदांश अग्निहोत्री के इंसाफ को रिश्तों की बेड़ियां भी कभी नहीं जकड़ सकती।